शाम धीरे धीरे रात में बदल चुकी थी। हवेली के ऊपर फैला आसमान पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। अपने कमरे में आर्यन लैपटॉप खोले बैठा था। स्क्रीन पर कई फाइलें खुली थीं, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। कभी विश्वनाथ का चेहरा याद आता, कभी शामली की आंखों के आंसू, और कभी वो पुरानी तस्वीरें। तभी अदिति ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल ठीक करने लगी। उसने हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। तैयार होते हुए उसने शीशे में आर्यन की तरफ देखा। तुम अभी भी काम कर रहे हो? आर्यन ने स्क्रीन से नज़र नहीं हटाई। हाँ, चलोगे मेरे साथ? आर्यन ने सिर उठाया। कहाँ? एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है, डिस्को में रखी है, सब लोग होंगे। कुछ सेकंड तक आर्यन चुप रहा, फिर हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की। नहीं, क्यों? मूड नहीं है। अदिति ने उसकी आंखों में देखा। उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। मामला सिर्फ ऑफिस के काम का नहीं था, कुछ और भी था जो उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा था। अब भी वही बात सोच रहे हो? आर्यन हल्का सा चौंका। कौन सी बात? जो भी बात है जिसे तुम बताना नहीं चाहते। कमरे में कुछ पल खामोशी रही, फिर आर्यन ने नजरें झुका ली। बस थोड़ा मन भारी है और कुछ जरूरी काम भी खत्म करना है। अदिति ने गहरी सांस ली। वो चाहती तो और सवाल कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, वो मुस्कुराई। तुम काम कर लो, मैं भी बस फॉर्मेलिटी पूरी करने जा रही हूँ, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। आर्यन ने सिर हिला दिया। ड्राइवर को साथ ले जाना। जी सर। अदिति हंस पड़ी। कुछ मिनट बाद वो बीचे उतर गई। हवेली के बाहर कार तैयार खड़ी थी। अदिति उसमें बैठी और कार धीरे धीरे मुख्य गेट से बाहर निकल गई। ऊपर कमरे की खिड़की से आर्यन कुछ पलों से जाता हुआ देखता रहा, फिर वापस अपने लैपटॉप की तरफ लौट आया। लेकिन आज फाइलों के अक्षर भी उसे धुंधले दिखाई दे रहे थे। उधर हवेली के नीचे वाले हॉल में माहौल अजीब सा था। रात के करीब 9:30 बज चुके थे, लेकिन आज भी विश्वनाथ घर नहीं लौटा था। रत्ना देवी बड़े सोफे पर बैठी थीं। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। सामने बैठी सुषमा देवी भी बार बार घड़ी देख रही थीं। रात हो गई है, रत्ना देवी बुदबुदाई। पहले तो ऐसा कभी नहीं करता था। सुषमा देवी ने भी धीरे से सिर हिलाया। फोन किया था मैंने। क्या कहा? बस इतना कि काम है और कुछ नहीं। दोनों औरतों के चेहरों पर चिंता और बढ़ गई। उसी समय रसोई की तरफ से कदमों की आहट सुनाई दी। शामली दोनों के लिए गर्म दूध लेकर आ रही थी। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अंदर कितनी उथल पुथल चल रही थी ये शायद वही जानती थी। उसने ट्रे टेबल पर रखी। माँ जी, आप लोग अभी तक जाग रही हैं? रत्ना देवी ने उसकी तरफ देखा। नींद ही नहीं आ रही। शामली ने दोनों के हाथों में दूध का ग्लास थमा दिया। आप लोग ये पीकर सो जाइए, विश्वनाथ जी को जरूर ऑफिस में कोई जरूरी काम होगा, शायद आज वहीं रुक जाएं। ये कहते समय उसके गले में जैसे कुछ अटक गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। रत्ना देवी ने लंबी सांस छोड़ी, फिर अचानक बोली, बहू। शामली का दिल धड़क उठा। जी, तुम्हें भी उसके साथ रुक जाना चाहिए था। एक पल में शामली का चेहरा फीका पड़ गया, हाथों की उंगलियां कस गईं। अब क्या जवाब दे, क्या कहे? कि विश्वनाथ तो उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता, कि पिछले 2 दिनों से वो उससे बच रहा है, कि उनके बीच कुछ ऐसा टूट चुका है जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। उसके होंठ खुले, लेकिन कोई जवाब नहीं निकला। तभी पीछे से एक आवाज आई, दादी। पापा ने ही शामली को घर भेज दिया था। सबने मुड़कर देखा। आर्यन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, हाथ में अभी भी लैपटॉप था। वो पास आकर खड़ा हो गया। शामली तो रुकना चाहती थी, लेकिन पापा ने कहा कि घर जाओ और आराम करो। शामली ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आर्यन बिना उसकी तरफ देखे सामान्य बना रहा। रत्ना देवी का चेहरा थोड़ा शांत हुआ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, सुषमा देवी भी बोली। विश्वनाथ कभी कभी काम में जरूरत से ज्यादा डूब जाता है, कल तक आ जाएगा। आर्यन ने बस हल्की मुस्कान दी, लेकिन भीतर वो खुद जानता था कि मामला सिर्फ काम का नहीं है, और शायद शामली भी जानती थी। कुछ सेकंड के लिए उसकी और शामली की नजरें मिली, फिर दोनों ने तुरंत नजरें हटा ली। हॉल में मौजूद किसी और ने उस छोटे से पल पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन दोनों के दिलों में बेचैनी और बढ़ गई। उधर शहर के सबसे बड़े डिस्को क्लब में रोशनी और संगीत का शोर गूंज रहा था। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थीं। डीजे का म्यूजिक इतनी तेज आवाज में बज रहा था कि लोगों को बात करने के लिए भी एक दूसरे के करीब जाना पड़ रहा था। अदिति अंदर दाखिल हुई। उसकी सहेली ने तुरंत उसे देख लिया। ओ माय गॉड,
तू आ गई? दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। मैं तो सोच रही थी तू नहीं आएगी। अदिति हंसती, बस थोड़ी देर के लिए आई हूं, फिर निकल जाऊंगी। दोनों बातें करते हुए पार्टी के बीच पहुंची। हर तरफ लोग नाच रहे थे, कुछ लोग ड्रिंक्स लेकर खड़े थे, कुछ फोटो खिंचवा रहे थे। अदिति की नजर इधर उधर घूम रही थी, तभी अचानक वो रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं, चेहरे पर साफ हैरानी उतर आई। कुछ दूरी पर बार काउंटर के पास एक आदमी खड़ा था, काले रंग की शर्ट, हाथ में ग्लास और चेहरे पर वही परिचित मुस्कान। कबीर। अदिति कुछ सेकंड तक उसे देखती रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ, ये यहां क्या कर रहा है? उसके होंठों से अनायास निकला। सहेली ने उसकी नजर का पीछा किया। अरे, तो उसे जानती है क्या? अदिति ने जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान पूरी तरह कबीर पर था। कबीर भी उसी समय मुड़ा और अगले ही पल उसकी नजर अदिति पर पड़ गई। दोनों की आंखें मिली। कबीर के चेहरे पर भी स्पष्ट हैरानी उभर आई, जैसे उसे भी यहां अदिति के मिलने की उम्मीद नहीं थी। कुछ क्षणों के लिए आसपास का शोर जैसे गायब हो गया। सिर्फ दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और उनके बीच अनगिनत सवाल खड़े थे। आखिर कबीर यहां क्या कर रहा था? और क्या ये मुलाकात सिर्फ एक संयोग थी या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी थी? रात अभी बहुत बाकी थी।